कुंज बिहारे गोपी जना बलभागिर्वर धारे गोपी जना बलभागिर्वर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना किरावन चारे यमुना तेरा बना सारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार स्वतः सह श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्रीदास ठाकुर की निताई गौर हरि प्रेमनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 80 श्लोक संख्या 4 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रियतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः।
बोलिए।
पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहितं अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहितं अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहितम् अस्नामि प्रयतात्मनः। माताजी माताजी शब्दार्थ पत्रं पति पुष्पं फूल फलं फल तोयम जल या जो कोई भी मैं मुझको भक्त्या भक्तिपूर्वक प्रयच्छति प्रदान करता है तत् वह अहम मैं भक्त्युपृहितम् भक्ति की भेंट अस्नामि स्वीकार करता हूँ प्रयतात्मनः शुद्ध चेतना वाले से। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। इसका तात्पर्य भगवद गीता के 19 अध्याय 26 श्लोक से लिया गया है। यह श्लोक भगवद गीता में आया है और यहां भी आया है। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती एक फूल एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। दोहराइए आप लोग। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती एक फूल एक फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तात्पर्य ये प्रसिद्ध शब्द भगवान द्वारा भगवद गीता में भी 9 अध्याय 26 श्लोक में कहे गए हैं। उपर्युक्त अनुवाद तथा शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता यथा रूप से लिया गया है। सुदामा के द्वारका गमन की वर्णित घटना के प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान कृष्ण के वाक्यों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यह श्लोक सुदामा की उस चिंता का उत्तर है कि उसके द्वारा लाई गई अनुचित भेंट अविवेकपूर्ण थी। भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्ति उपरितम शब्द भले ही अनावश्यक लगे क्योंकि दोनों का अर्थ भक्ति पूर्वक भेंट करना है, किंतु भक्त्या शब्द यह सूचित करता है कि भगवान प्रेम पूर्वक भेंट करने वाले की भक्ति का किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण यह घोषित करते हैं कि शुद्ध प्रेम विनिमय भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, कोई वस्तु भले ही अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद हो या न हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्तिपूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूंगा तो इससे मुझे महान आनंद होता है। इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं बरतता। अस्नामी क्रिया का भाव यह है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा लेते हैं जो सूंघने की वस्तु है, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में प्रेम में वे विभोर हो जाते हैं। हो सकता है कि भगवान से कोई यह प्रश्न करे तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य अर्चा विग्रह को अर्पित वस्तु नकार देंगे। भगवान उत्तर देते हैं, हाँ मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। इसे भगवान प्रेतात्मन शब्द द्वारा कहते हैं, जिसका अर्थ है मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय वाला बन सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ब्राह्मण के साथ किस तरह से भक्ति में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है आप सब जानते हैं। सुदामा विप्र भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी थे, बाल्यावस्था में संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ में पढ़ाई किए थे और पढ़ाई के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो भक्ति के उच्च स्तर पर थे और भक्ति के मार्ग में आने वाले सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो भक्ति से पीछे नहीं हटे। पीछे के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा जी से मिलते हैं तो अपने पूर्व काल के विद्यार्थी जीवन में किस तरह से वो गुरु आश्रम में रह करके संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु की अध्यक्षता में सेवा किए थे उसका याद करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, हम संदीपनी मुनि के आश्रम में बाल्यावस्था में जब पढ़ाई करते थे तो एक बार गुरु के आदेश से हम लोग जंगल में गए थे। विद्यार्थी जीवन में गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करना पड़ता है तो संदीपनी मुनि के आश्रम में रहते हुए कृष्ण सुदामा जी के साथ एक बार जंगल में ईंधन लाने के लिए गए थे, लकड़ी लाने के लिए गए थे। लकड़ी लाने गए तो उस दिन बहुत भीषण वर्षा और तूफान आई और उस तूफान में वो लोग जंगल में भूल गए रास्ता भूल गए तो पूरी रात्रि जंगल में वो लोग बिताए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में लिखते हैं, श्रील श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि शक्तिशाली हवा और वर्षा की निरंतर चपेट में आकर बाढ़ के जल में अपना रास्ता भूल गए और कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके अत्यंत दीनहीन होकर जंगल में इधर उधर घूमने लगे। श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि परिभ्रमी क्रिया में परि उपसर्ग है, भ्री या भ्रम धातु के साथ भ्रम से सूचित होता है कि कृष्ण तथा सुदामा इधर उधर भटकते रहे और भ्री होने से चूंकि इसका अर्थ ले जाना है, यह सूचित होता है कि जब दोनों युवक इधर उधर घूम रहे थे तब वे अपने गुरु के लिए एकत्र किए ईंधन को अपने साथ उठाए हुए थे और जंगल में जब भूल गए और इधर उधर घूम रहे थे तो भी जो लकड़ी का बंडल था अपने सिर पर लिए हुए थे। हमारे गुरु संदीपनी हमारी विषम स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। संदीपनी मुनि सुबह रात्रि कृष्ण और सुदामा जंगल में व्यतीत किए और सुबह संदीपनी मुनि कृष्ण और सुदामा का अन्वेषण करते हुए जंगल में आए तो कृष्ण और सुदामा को इस विषम संकट में देख करके संदीपनी मुनि कहते हैं कि यहो हे पुत्र का जूयम असमर्थे अति दुखिता आत्मा वै प्राणिनाम पृष्ठ तमना दृत मत्परा। संदीपनी मुनि ने कहा कि हे मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। निसंदेह सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हों। कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है, यह शरीर मैं नामक भौतिक विचार का भी आधार है और मनुष्य का धन मेरा है यह इंगित करता है, किंतु गुरु को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरु भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तो ये इन घटनाओं का जिक्र करते हैं सुदामा से, जब सुदामा जी पोरबंदर, आज जो गुजरात में पोरबंदर है वही सुदामापुरी है, वहां आज भी सुदामा जी का घर है और वहां से सुदामा जी पैदल चल करके द्वारका गए थे। लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर द्वारका है और पैदल चलते हुए रास्ते के असह्य पीड़ा से दुखित होते हुए भी सुदामा जी के मन में एक प्रबल भावना थी कृष्ण दर्शन की, कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि बाल्यकाल में कृष्ण के साथ में पढ़े, इसके बाद फिर उनसे समागम नहीं हुआ, फिर भेंट नहीं हुआ, तो कृष्ण के दर्शन करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ था इसका वो लाभ उठाना चाहते थे। और सुदामा जी इसलिए कृष्ण के पास गए कि उनके साथ कुछ दिन रह करके मनोविनोद करेंगे, लेकिन उनकी पत्नी, इस आगे के अध्याय में, इसी अध्याय में आया है कि उनकी पत्नी उन्हें बार बार कहती थी कि आपके मित्र हैं कृष्ण, जो बाल्यावस्था में आप लोग साथ में पढ़े हैं और इतने आप दरिद्रता में क्यों जीवन यापन कर रहे हैं, इतने गरीबी में आप क्यों हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक के टीका में लिखते हैं कि एक दिन सुदामा की पत्नी अपने घर में कुछ नहीं प्राप्त किया, सुदामा जी को खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था घर में, उनकी पत्नी अपने पति को कुछ खाने के लिए नहीं दे सकी, इसके लिए वो बहुत दुखी थी। वो दुख इतनी दुखी थी कि वो कांप रही थी, और सुदामा जी से वह कही कि मुझे ज्ञात है कि कृष्ण जो विष्णु वंशियों और अंधक और यादवों के जो राजा हैं, जो द्वारकाधीश हैं, वो आपके मित्र हैं और बहुत ब्राह्मण भक्त हैं। वो ब्राह्मण्य देव हैं, वो ब्राह्मणों के बहुत प्रेमी हैं, वो ब्राह्मण हिताय च, और आप उनके मित्र हैं और उनके भक्त भी हैं, तो आप कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते हैं? वो बहुत दयालु हैं, आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। उनकी पत्नी बार बार यह कहती थी कि आप द्वारका जाइए, और इतने संकट में क्यों हैं? वो बहुत बड़े राजा हैं और बहुत दयालु हैं, उनके पास जो भी जाता है उसको उसके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो बार बार अपनी पत्नी के कहने से सुदामा जी के मन में यह भाव आया कि ठीक है, इसी बहाने में कृष्ण का दर्शन कर लूं। तो सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है, उनके पास, मित्र के पास मैं जा रहा हूं, तो उनके पास भेंट के लिए क्या वस्तु है, क्या मैं उन्हें उपहार में दूंगा? तो उनकी पत्नी जो है पड़ोसी के घर से चावल मांग कर लाती है, और वो चावल भी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे, चावल के छिलके थे, चावल खाने के योग्य नहीं थे, और चावल को देने के लिए भी उसके पास वस्त्र नहीं थे, तो पुराने वस्त्र में चावल को बांध करके सुदामा को देती है। तो वो चावल लेकर के सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। जब द्वारका में जाते हैं तो वहां पर कृष्ण के पास पहुंचने में बहुत समय लगता है। पहले बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, और इसके बाद फिर कई डेवढ़ी, सात डेवढ़ी लोग बोलते हैं, सात बड़े बड़े दरवाजे थे, जैसे राजा के पास किला होता है और किले में बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, और प्रत्येक दरवाजों पर बड़े बड़े सिपाही होते हैं, चौकीदार होते हैं, जैसे यहाँ वॉचमैन हैं, तो उनको अपना पूरा एड्रेस देना पड़ता है, उनको संतुष्ट करने के बाद ही आप अंदर प्रवेश करते हैं। तो सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनके शरीर में वस्त्र भी बहुत पुराने थे, फटे पुराने वस्त्र थे, वस्त्रों से ऐसा लगता था को बहुत गरीब है, और शरीर उनका बिल्कुल कमजोर हो गया था, शरीर में सब हड्डी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उनको अंदर जाने के लिए अनुमति मिल गई। भगवान कृष्ण का अंतरंग मित्र ब्राह्मण सुदामा पूरी तरह निष्काम था, उसे जो कुछ अपने आप मिल जाता उसी से वह अपना तथा अपने पत्नी का भरण पोषण करता था। इस तरह वे निर्धनता के मारे थे। एक दिन जब सुदामा की पत्नी अपने पति के लिए भोजन तैयार करने के लिए कुछ न जुटा पाई तो सुदामा के पास गई और उससे कहा कि द्वारका में रह रहे आपके मित्र कृष्ण के पास जाकर कुछ दान मांगे। सुदामा पहले तो हिचक रहे थे, किंतु जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो यह सोचकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान से भेंट करने का यह अति शुभ अवसर होगा, उनकी पत्नी कृष्ण को उपहार में देने के लिए मुट्ठी भर चावल मांग लाई, और सुदामा द्वारका के लिए रवाना हो गए। जब सुदामा भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी के महल के निकट पहुंचे तो भगवान ने उन्हें दूर से ही देख लिया। कृष्ण तुरंत ही रुक्मिणी के बिस्तर से उठ खड़े हुए और उन्होंने अति हर्षपूर्वक अपने मित्र का आलिंगन किया। फिर उन्होंने सुदामा को बिस्तर पर बिठाया, अपने हाथों से उसके पांव धोए और इस जल को अपने सिर पर छिड़का। इसके बाद उन्होंने उसे अनेक भेंट दी और धूप दीप आदि से उनकी पूजा की। इस बीच रुक्मिणी उस फटे पुराने वस्त्रधारी ब्राह्मण पर चामर झलती रही। इसे महल के वासियों को आश्चर्य हुआ। तब कृष्ण ने अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने गुरु की पाठशाला में बहुत काल पूर्व रहते हुए जो कुछ उन्होंने मिलकर किया था उसका स्मरण करते हुए सुदामा से इंगित किया कि कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने की लीला में इसलिए प्रवृत्त होते हैं कि मानव समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत हो सके। तो भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के महल के समीप जब सुदामा जी जाते हैं तो भगवान कृष्ण उनको देख लेते हैं और देखने के बाद तुरंत आसन से खड़े हो जाते हैं और कृष्ण सुदामा का आलिंगन करते हैं, जबकि अन्य लोग देख करके बहुत आश्चर्य होते हैं कि एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण जिसके वस्त्र भी फटे पुराने हैं, शरीर पर वस्त्र भी ठीक नहीं है, लेकिन भगवान उसका आलिंगन कर रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण प्राय बलराम जी का आलिंगन करते थे और रुक्मिणी जी का आलिंगन करते थे, सबको आलिंगन नहीं करते थे, लेकिन प्रथम उस राजसभा में सारे लोग देख रहे थे कि ये गरीब ब्राह्मण जो बिल्कुल मैला कपड़ा पहना है, शरीर बिल्कुल कृष्ण है, ऐसे ब्राह्मण को आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगन करते समय कृष्ण के आंखों में आंसू आ गई, कृष्ण के आंख में आंसू की धारा निकल गई। सुदामा के दरिद्रता को देख करके भगवान समझ गए कि बहुत दरिद्र है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवान करुणा निधान है, दीन बंधु हैं। सुदामा जी के इस विपद संकट को देखकर उनका हृदय जो है फूट गया और उनको आलिंगन करके रुक्मिणी के बेड पर उनको आसीन कर दिए। जो बेड का वर्णन है कि बेड ऐसे था जैसे दूध का जो झाग होता है, ऐसे सफेद मलमली सेज पर सुदामा जी को बैठा करके भगवान कृष्ण सुदामा का पाद प्रक्षालन करते हैं, उनका पैर धोते हैं। ये चित्र में दिया है, देखिए कि भगवान किस तरह से सुदामा का पैर धो रहे हैं। वहां पर बहुत सारे दास दासियां भी थीं, नौकर भी थे, लेकिन अपने मित्र के लिए स्वयं भगवान सेवा में आते हैं और पैर धो रहे हैं। पैर धोते समय उनको बड़ा आश्चर्य होता है, सुदामा के पैर में अनेक कांटे चुभे थे, पांव में बवाय फट गई थी, चलते चलते पैदल चल रहे थे। तो यह देख करके उनका हृदय और आंसुओं से भर आया और पैर धोने के बाद उनका मसाज किए, तेल मालिश किए, फिर उनका आरती उतारे अगुरु से, इत्र से, सुगंधित वस्तुओं से। अतिथि की सेवा जिस तरह से की जाती है, भगवान स्वयं सुदामा का आतिथ्य सत्कार किए और उनको खाने के लिए अनेक उत्तम कोटि के सामग्री दिए। फिर उनसे पूछते हैं कि मित्र, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं, आप संदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे, तो क्या आपका शादी विवाह भी हो गया होगा? कृष्ण विनोद में, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी विनोद में पूछ रहे हैं कि आपकी शादी भी हो गई होगी और आप कैसे घर गृहस्थी में रहते हैं। भगवान सब जानते हुए पूछ रहे हैं, आपकी दिनचर्या कैसे बीतती है, आपके घर में कौन कौन लोग हैं, लेकिन सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप हैं। फिर कृष्ण इस तरह से जब बात कर रहे थे तो सुदामा जी जो चावल लेकर आए थे फटे पुराने वस्त्र में, उनके कंधे पर वो लटक रहा था, तो भगवान ने कहा कि आपने अपने घर से कुछ भेंट में मुझे लाया है, तो क्या वस्तु है? एक श्लोक में यहां पर उद्धृत किया गया है, श्री भगवान उवाच किम उपायन आनीतम ब्रह्मण्ये भवता गृहात अनुपाहृतम भक्तै प्रेमणा भूरियेव मे भवेत। भगवान ने कहा हे ब्राह्मण, तुम अपने घर से मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? शुद्ध प्रेम वश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु भक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि सुदामा जी वो चावल देने में शर्मा रहे थे कि मैं चावल कैसे दूं, चावल भी वो उत्तम कोटि का चावल नहीं था, वो भी पुराने वस्त्र में बंधा हुआ था। तो सुदामा जी अपना सिर नीचे कर लिए कि ये उपहार देने के योग्य नहीं है। तो लेकिन भगवान कृष्ण सुदामा के मन के भाव को जान गए, तो भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं भक्ति से जो भी कुछ कुछ मुझे देता है तो मैं इसे प्रेम से आनंद से लेता हूं, छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूं, किंतु भक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी भेंट भी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाती। अगर कोई भक्त नहीं है, मुझे बड़ा वस्तु भी लाता है तो मुझे प्रिय नहीं है। तो सुदामा जी के उस मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं। माने सुदामा जी मूक रहते हुए, मौन रहते हुए यह कह रहे थे कि मैं आपको भेंट के लिए वो चावल कैसे दूं, ये चावल आपके खाने के योग्य नहीं है। तब भगवान कहते हैं, यह श्लोक कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्त उपरीतम अश्नामी प्रयतात्मनः। यह श्लोक मैं भी देखा, यह श्लोक गीता में भी है और यहां भी आया है, यहां सही बैठता है यह श्लोक। तो सुदामा जी के मनोदशा, सुदामा जी की ऐसी मनोदशा हो गई थी कि चावल मैं कैसे दूं, और चावल यहां ये भरी सभा में सबके सामने कृष्ण को खाने के लिए मैं दूं, उपहार में दूं, तो ये ठीक नहीं है। ये प्रसिद्ध शब्द भगवान द्वारा भगवद गीता में भी कहे गए हैं। सुदामा के द्वारका गमन की वर्णित घटना के प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान कृष्ण के वाक्यों की व्याख्या करते हैं, और यह श्लोक सुदामा के उस चिंता, सुदामा के मन में यह चिंता हुई कि ये चावल मुझे नहीं देना चाहिए, तब भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे भक्ति से अगर कोई एक पत्ता भी देता है, एक फूल भी देता है, एक फल भी देता है, जल भी देता है, तो मैं खाता हूं। यहां पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अश्नामी क्रिया का भाव यह है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा जाते हैं, फूल भी खा जाते हैं, पत्रम पुष्पम। अश्नामी क्रिया का भाव यह है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा लेते हैं, जो फूल सूंघने की वस्तु है, फूल को कोई खाता नहीं है, लेकिन भगवान फूल को भी खा जाते हैं, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भाव में प्रेम से वे विभोर हो जाते हैं, अपने भक्त के भक्तिमय भाव में विभोर हो जाते हैं। यह नहीं समझते हैं कि ये खाने की वस्तु है या सूंघने की वस्तु है, उसके प्रेम का प्रतिदान करने के लिए भगवान फूल को भी खा जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कुछ ऐसा भी फूल है जो खाया भी जाता है, जैसे तुलसी का फूल है वो खाया जाता है, अनार का फूल खा सकते हैं, अड़हुल का फूल है वो भी खाया जाता है, कुछ ऐसे फूल हैं जिसको खा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव यह है कि भगवान अपने भक्त के भाव के बस में होकर फूल को भी खा जाते हैं। इतोक्ति दुजह तस्मै दृढ़ितः पतये श्रियः पृथक प्रसूतिम राजन्न न प्रायच्छत वाङ्मुखः। सुखदेव गोस्वामी इस पर कहते हैं, इस पर कमेंट करते हैं कि इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदुल देने में अत्यधिक हिचकिचा रहे थे। वह लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिए थे। सुखदेव गोस्वामी वहां का चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे आप दूरदर्शन में चित्र देखते हैं तो वहां का चित्र प्रस्तुत किए हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप जो उपहार में वस्तु लाए हैं मुझे दीजिए। तो सुदामा जी लक्ष्मीपति पतये श्रिय, जो लक्ष्मी के पति हैं, जिनकी सेवा में हजारों लक्ष्मी रहती हैं, जिनके यहाँ खाने के अनेक व्यंजन हैं, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, ऐसे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को चावल कैसे भेंट में दें? ये सोच करके सुदामा जी बिल्कुल लज्जित हो गए थे और लज्जित होकर अपने सिर को नीचे कर लिए थे। प्रायः छद्मवांग मुख। तो आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण को लक्ष्मीपति कहने का आशय है कि सुदामा ने अपने आप से पूछा, सुदामा अपने आप पूछते हैं कि भला श्रीपति इस कड़े बासी चावल को कैसे खा सकेंगे। सिर नीचा करके ब्राह्मण ने अपनी इस ध्यान को प्रकट किया, हे प्रभु, आप मुझे इस तरह लज्जित न करें। यदि आप बारंबार भी अनुरोध करें तो भी मैं आपको इसे नहीं दूंगा। मैं यह संकल्प कर लिया है, लेकिन भगवान ने अपने विचार से उसका प्रत्युत्तर दिया, चूंकि तुम मेरे भक्त हो, अतएव आते समय तुमने जो भी मन में इरादा स्थिर किया है उसे विफल नहीं होना चाहिए। भगवान भी उत्तर देते हैं कि नहीं, तुमने जो संकल्प लिया है मैं उसे विफल नहीं होने दूंगा, तुम भक्त हो। भक्ति उपरीत, भक्ति पूर्वक अगर कोई भेंट तुच्छ वस्तु भी हो तो उसका मूल्य नहीं होता है। उसमें मूल्य क्या है? भक्ति उपरहितम, भक्ति पूर्वक। अगर कोई भक्त्या, यहां पर भक्ति उपरहितम माने भक्ति की भेंट, भगवान उसको भक्ति की भेंट मानते हैं, वो वस्तु का वहां महत्व नहीं रहता है, वो भक्ति का महत्व भगवान देखते हैं, भक्ति के चलते भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। चाहे वस्तु कितना भी निकृष्ट हो, कितना भी तुच्छ हो, उसका भगवान विचार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय के मनोभाव को जानते हैं। समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है, सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। अतः उन्होंने सोचा, इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक स्वर्ग की इच्छा से मेरा पूजा नहीं किया है, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायणा पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया है। मैं उसे वह संपत्ति प्रदान करूंगा जो अमर देवतागण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका करते हैं कि भगवान को क्षणिक आश्चर्य हुआ, मेरी सर्वज्ञता के बावजूद यह किस तरह संभव हो सका कि यह मेरा भक्त इतना दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। भगवान सर्वज्ञ हैं, क्या इसके पहले वो नहीं जानते थे कि सुदामा दरिद्र हैं, उनके घर में खाने के लिए वस्तु नहीं है? वो नहीं जानते थे? जब सुदामा उनके महल में आए तभी जानते थे। फिर भी सुदामा जी को दरिद्रता का क्यों सामना करना पड़ा? विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि भगवान अपने भक्त को सांसारिक भोग वस्तु नहीं देते हैं, अगर संसार की उपलब्धि देते हैं तो उसमें वो भूल जाता है, इसलिए भगवान उसको भक्ति का परम रस का आस्वादन कराने के लिए भौतिक वस्तुओं का आस्वादन नहीं कराते हैं। इसलिए सुदामा जी को धन नहीं दिए थे और सुदामा जी की इच्छा भी नहीं थी, उनको धन की इच्छा नहीं थी और द्वारका गए थे तो धन लेने के लिए नहीं गए थे, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा थी, पत्नी को संतुष्ट करने के लिए वो द्वारका गए थे। तो भी द्वारका में रहते हुए कृष्ण से वो स्पृहा नहीं रखते थे कि कुछ मिले। ऐसा यहाँ पर वर्णन है कि सुदामा जी एक रात्रि कृष्ण के पास रहे, जब सुबह जाने लगे तो कृष्ण उनको विदा करते हैं लेकिन कुछ वस्तु भेंट नहीं देते हैं, कोई ठोस वस्तु उन्हें नहीं दिए, लेकिन फिर भी सुदामा जी बहुत संतुष्ट थे और यही याद करते हुए जा रहे थे कि कृष्ण हमें कितना सम्मान दिए। जो लक्ष्मी के पति हैं वो मुझे आलिंगन किए और रुक्मिणी जिनको चावर दे रही थी, कृष्ण जिनका मसाज किए, अपने हाथों से जिन्हें खिलाए, कृष्ण अपने हाथ से सुदामा जी को खिलाए, तो इन सब बातों को याद करते हुए सुदामा जी रास्ते में बहुत आनंद में, ब्रह्मानंद आनंद में विभोर होकर के जा रहे थे। इस प्रकार सोचते हुए सुदामा ने सोचा, भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात हैं और अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देख लिया है, निसंदेह लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले ने सबसे दरिद्र भिखारी का उन्होंने आलिंगन किया है। सुदामा जी कहते, मैं कितना दरिद्र हूं, पापी हूं, फिर भी उन्होंने मुझे आलिंगन किया है। निवासित प्रिया जुष्टे प्रियंके भ्रातरो यथा महिष्या जीवजित श्रांतो बाल व्यंजन हस्तया, उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा आचरण किया है और अपनी प्रियतमा के पलंग पर बैठाया है, चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए उनकी रानी ने चामर से मुझे स्वयं पंखा झला है। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि भी पूजितो देव देवे न विप्र देवे न देववत, यद्यपि वे समस्त देवताओं के स्वामी हैं और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य हैं, फिर भी उन्होंने मेरे पांव की मालिश करके तथा अन्य विनित शुश्रूषाओं द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं ही देवता हूं, जबकि वो देव देव हैं। देवता भी जिनकी पूजा करते हैं देव देव जगत पते, लेकिन श्री कृष्ण मेरी पूजा किए, इसे सिद्ध होता है कि वो ब्राह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। मनुष्य स्वर्ग में स्वर्गापवर गयो पुंसाम रसायाम भूविषम पदाम सर्वासाम अपि सिद्धिनाम मूलम तत्क्षरणाचरणम, मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल में तथा पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है उसका मूल कारण उनके चरण कमलों की भक्ति है। भगवान के चरण कमलों की भक्ति करके जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं उसके पीछे भगवान की कृपा है। सुदामा जी कहते हैं कि मैं तो बहुत निर्धन बेचारा और पापी इस सम्मान के काबिल नहीं था, लेकिन भगवान ने जो सम्मान दिया है उसका कोई बराबरी नहीं है। इस तरह सोच विचार में सुदामा जी रास्ते में जा रहे थे और आते आते फिर अपने गांव में आते हैं, पोरबंदर में पहुंच जाते हैं। तो जब अपने गांव में आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी वहां बहुत बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे थे और महल से सोने चांदी हीरे मरकतमणि से वैभव निकल रहे थे, अग्नि जैसा प्रकाश निकल रहा था। और महल में बड़े बड़े चौकीदार थे। महल के चारों तरफ सुंदर सुंदर बगीचे हैं और सुंदर तालाब हैं जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, पक्षी चहक रहे हैं। जब उस पतिव्रता जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उनका पति आया है तो वह हर्ष के मारे तुरंत घर से बाहर निकल आई। वह दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को घर को स्वर्ण धाम बना दिया था, सोने का महल। इसलिए वहां प्रत्येक व्यक्ति अब सुंदर शरीर वाला और स्वर्ग के वेशभूषा जैसा युक्त था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुदामा की निर्धन तथा क्षीण पत्नी ने, जो कि एक रात पूर्व टूटी फूटी कुटिया के नीचे चिथड़ों में सो रही थी, प्रातः जगने पर पाया कि वह तथा उसका घर विचित्र रीति से बदल गए हैं। एक रात्रि में सब कुछ हो गया। सुदामा की पत्नी ने देखा कि रात्रि में हम फटे पुराने कपड़े पहने थे और प्रातः काल देखिए कि अच्छे वस्त्र पहनी है। सब महल में सोना चांदी अनेक सुंदर सुंदर मणियों से घर का श्रृंगार किया हुआ था और घर के चारों तरफ सुंदर सुंदर बगीचे हैं, झरने हैं और उन सरोवरों में सुंदर सुंदर प्रकार के फूल खिले हैं, अनेक प्रकार के पक्षी, शीतल मन सुगंध हवा चल रही है और सुंदर वातावरण हो गया है। तो ये कैसे हो गया? तो भगवान की कृपा से रात्रि में ही ऐसा परिवर्तन हो गया। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित हो गए। रत्न जटित लाकेटों से अलंकृत दासियों के बीच चमक रही वह उसी तरह तेजोमय लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने दैवी विमान में दीपित हो, जैसे स्वर्ग की अप्सराएं विमान से आती हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान उस ब्राह्मण को दरिद्र अवस्था में रखे रहे जिससे उसकी पत्नी उसे पहचान सके। सुदामा जी की वही स्थिति थी जो पहले थी, उनका कपड़ा वही था जैसे पहले फटा पुराना था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सुदामा को भगवान ने वैसे इसलिए रखा था कि उनकी पत्नी पहचान जाए कि वो हमारा पति है, उनका वेशभूषा वैसे ही था। तो सुदामा जी जैसे घर के सामने आए तो उनकी पत्नी ने उनको पहचान लिया कि हमारे पति आ गए हैं। पति को आकर देख करके वो बहुत स्वागत की और साथ में बहुत सारे कीर्तन गाने वाले थे, स्वर्ग की अप्सराएं जैसे नृत्य करने वाली स्त्रियां थी, ब्राह्मण उस स्वर से मंगल गीत गा रहे थे, उनका खूब स्वागत हुआ और फिर उनके महल में उनको ले जाया गया। महल में जब गए तो सुदामा जी देख रहे थे कि महल बिल्कुल वो जहां झोपड़ी थी जहां बिल्कुल वातावरण बदल गया था। सुदामा जी मन में विचार कर रहे थे कि जहां हम जमीन पर सोते थे वहां सुंदर सुंदर मखमली सेज लगी है, जहां पैर में जूते तक नहीं थे, पैदल बिना जूते गए थे, अब वहां सोने का राज सिंहासन है और हाथी घोड़े जो महाउत जो है हाथी लेकर खड़ा है उनके स्वागत के लिए, जैसे आज कल लोग मर्सिडीज कार रखते हैं, बहुत पैसे वाले लोग प्लेन रखते हैं, हेलीकॉप्टर रखते हैं, उस समय लोग हाथी घोड़े सब रखते थे। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान। अब पैसा जिसके पास कागज का रुपया है तो बहुत धनी है। पहले लोग धनी होते थे तो उसका पहचान होता था कि वो किस उसके पास कितना हाथी है, कितना घोड़ा है, कितनी गायें हैं। जैसे वसुदेव जी के साथ जब देवकी का विवाह हुआ था तो कंस ने विवाह में दहेज में 400 हाथी दिया था और 1800 घोड़ा दिया था और लाखों गाय दान में दी थी। नंद महाराज के पास भी 9 लाख गाय थी। तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और धन में क्या था तो रत्न है, हीरा सोना चांदी पन्ना ये सब धन होते थे जिसका मूल्य हमेशा रहता है। कागज का रुपया है अगर पानी में डाल दीजिए तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है, जला दीजिए तो मूल्य खत्म हो जाता है, लेकिन सोना को अगर आप जला भी दीजिए तो स्वर्ण भस्म हो जाता है, हीरा को जला भी दीजिए तो भी उसका मूल्य रहता है। तो सुदामा देखे कि उनके घर में अनेक प्रकार की संपदा है, सोना चांदी अनेक रत्न भरे हैं। देखकर उनका हृदय भगवान के करुणा के प्रति अभिभूत हो गए कि भगवान कितने करुणामय हैं। जबकि प्रत्यक्ष भगवान उनको कुछ नहीं दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने उनको हाथ में कुछ विदाई नहीं दिया था। जैसे किसी को विदाई किया जाता है तो उसको नया वस्त्र दिया जाता है, आभूषण दिया, लेकिन कृष्ण प्रत्यक्ष सुदामा जी को कुछ नहीं दिए थे। जब चावल विश्वनाथ चक्रवर्ती एक श्लोक में लिखते हैं कि जब भगवान चावल खा रहे थे, वो चावल का एक मुट्ठी खाए थे तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया था कि कुछ चावल रहने दिए जिससे अन्य लोग भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि रुक्मिणी द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव यह है कि यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए सारे तंदुल को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियों सौतों नौकरों तथा मेरे लिए क्या बचेगा। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया था कि बस अब मत चावल खाइए, तब तो हम में से किसी को एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने संकेत द्वारा अपनी नौकरानियों से कहा, इन कड़े चावलों से मेरे स्वामी का मुलायम पेट बिगड़ जाएगा। श्रील प्रभुपाद की टीका है कि जब भगवान कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं, तो रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी है उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ, इतनी दया उठाती हैं कि उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में परिवर्तित करना पड़ता है। जब कोई भक्त भगवान को खाने के लिए कोई चीज देता है और भगवान प्रसन्न होकर जब उसको खा लेते हैं तो रुक्मिणी मतलब जो लक्ष्मी है वो भक्त को विश्व में सबसे धनी व्यक्ति बना देती हैं। उसके घर में जा करके वैभव के सारे चीज दे देती हैं। तो भगवान ने जैसे एक मुट्ठी चावल का ग्रास लिया उसी समय रुक्मिणी ने कहा कि बस करिए, ये इतने में तो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हो सकता है। तो स्वयं लक्ष्मी जी सुदामा जी के घर में जाकर वैभव को उनको धनी बना देती हैं। महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार के प्रभुत्व संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है, एक मुट्ठी चावल ही पर्याप्त है और खाने की जरूरत नहीं है। भगवान उसके बदले में अपने आप को भी दे देते हैं। ऐसे कहा गया कि एक तुलसी दल मात्र से, तुलसी दल मात्रेण जलम चुलके नवा, एक तुलसी दल से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं। जो मुट्ठी भर चावल तो बहुत है, तो रुक्मिणी का मनोभाव यह है कि और अधिक खाने की जरूरत नहीं है। भगवान चावल क्यों खाए कि अपने भक्त के भक्ति के बदले में चावल खाए, भक्ति से, वो चावल के भूखे नहीं है भगवान। भगवान भक्त के भक्ति का सम्मान देने के लिए उन्होंने चावल खाया है और उसके बदले में अपना अशेष ऐश्वर्य दिया है कि लोग यह न समझें कि भगवान का भक्त दरिद्र होता है। भगवान का भक्त बहुत धनी होता है, लेकिन भगवान कब देते हैं, जब भक्त, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि जब भक्त भक्ति में परिपक्व हो जाता है तब उसको संसार का भोग देते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को दिए, ध्रुव महाराज को दिए, वो नहीं ले रहे थे, दिए मानम न गृहणंती, देने के बाद भी वो नहीं ले रहे थे, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में भगवान भक्त को संसारी भोग नहीं देते हैं कि भोग में वो लिप्त हो जाएगा। जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे को धन नहीं देते हैं कि वो धन का दुरुपयोग करने लगेगा, जब वही बड़ा हो जाता है, धन का उपयोग करना जान जाता है, तो उसको सब धन संपत्ति दे देते हैं। तो भगवान भी भक्त को अपनी सारी संपत्ति कब देते हैं, जब जानते हैं कि वो विषयाशक्ति इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहेगा, तब उसको अपना संपदा दे देते हैं। प्रारंभ में माता पिता अपने बच्चे के हाथ में चाकू भी नहीं देते हैं कि वो हाथ अपना काट लेगा, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो चाकू रखे या चाहे पिस्टल रखे कोई भय नहीं होता है माता पिता को, वो जानते हैं कि अब समझदार हो गया है। तो उसी तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं कि वो विषय में या इंद्रिय तृप्ति में न गिरे, इसलिए उसको समय पर कब क्या देना है जानते हैं। जैसे वैद्य जो है रोगी को क्या देना है, कब क्या खाना देना है, वो वैद्य देता है, जानता है कि रोगी को इस समय मिठाई नहीं देना है। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवान ने विचार किया कि अब सुदामा जी को संसार का पूरे विश्व का गोलोक का भी वैभव दे दिया जाए तो भी ये भक्ति से भ्रष्ट नहीं होंगे। सामान्य लोग भक्ति के प्रथम सोपान पर ही प्रारंभिक अवस्था में ही गिर जाते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि मिलने पर वो गिर जाते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्त को प्रारंभ में ये सब चीजें नहीं देते हैं, और जिसको देते हैं उसको भक्ति नहीं देते हैं। भुक्ति मुक्ति भुक्ति दिया मुक्ति दिया यदि भक्त छाड़े, स्वभक्ति न दिया कृष्ण राखे लुकाइए। भगवान भक्ति को जल्दी नहीं देते हैं, उसको अंडरग्राउंड करके रखते हैं, भुक्ति मुक्ति दे देते हैं। जब वो देखते हैं कि उसकी सांसारिक वस्तुओं में कोई स्पृहा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, संसार के भोग से वो बिल्कुल ऊपर हो गया है, तब उसको भक्ति देते हैं। कोई भक्ति करता है संसार की सुख समृद्धि के लिए तो भगवान उसको दे देते हैं। कोई भक्ति चाहता है, भक्ति की कामना करता है, तो संसारिक वस्तु नहीं देते हैं। तो इसमें यह दर्शाया गया कि सुदामा जो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, गरीबी में भी वो भक्ति करते रहे, यहां तक कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था फिर भी वो भक्ति करते थे, मधुकरी करके वो भक्ति करते थे, हमेशा भगवान का नाम जप करते थे। और जब उनकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप द्वारका में जाइए और आपके मित्र जो राजा हैं आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, तो भी उनको वस्तु की कोई कामना नहीं थी, कोई कामना लेकर नहीं गए थे मिलने के लिए, केवल कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे। लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, सबके मनोभाव को जानते हैं, कृष्ण समझ गए कि इसकी पत्नी की इच्छा है कि उसको संसार का सुख चाहिए, तो उन्होंने उनको धन दिया है। तो ये लीला बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन समय हो गया है इसलिए हम यही खत्म करते हैं। कोई प्रश्न है पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु। जनरली भक्त लोग कृष्ण भगवान से किसी तरह का सेवा नहीं लेना चाहते हैं। सुदामा जी कृष्ण भगवान का बाल्य दोस्त थे, तो कृष्ण भगवान ने उनका सेवा किया है, इसका मतलब सुदामा जी को मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है करके?
ये मालूम था पहले ही, वो सुदामा जी पीछे के अध्याय में कहते हैं कि आप परम भगवान हैं, लेकिन मनुष्य की लीला करते हैं। गुरु आश्रम में रहकर आपने वेद का शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन आप तो सबके गुरु हैं। सुदामा जी जानते थे कि कृष्ण परम भगवान है। सुदामा जी की इच्छा नहीं थी सेवा लेने की। भक्त नहीं चाहता है भगवान से सेवा लेना, लेकिन भगवान उन्हें सेवा दे रहे थे। जैसे अर्जुन नहीं चाहते थे सेवा लेना, लेकिन पांडवों की, जब पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान से जब आते थे तो कृष्ण पांडवों का रखवाली करते थे, पहरादारी करते थे, और कभी कभी अर्जुन का पैर भी मसाज भी करते थे, उनके घोड़ों को नहलाते थे और घोड़ों के घाव के ऊपर दवा लगाते थे, और अर्जुन को तैयार होने से पहले तैयार होकर रथ को सजाते थे। तो भगवान अपने भक्त के लिए सेवा देना चाहते हैं, भक्त की इच्छा नहीं रहती है। अर्जुन नहीं चाहते थे सेवा लेना, उसी तरह भगवान सुदामा को सेवा दिए, सुदामा के अंदर सेवा की स्पृहा नहीं थी। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, कुछ लेते हैं तो देते भी हैं। भगवान अपने भक्त से बहुत कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा दे देते हैं। आदान प्रदान करने में उनको आनंद आता है। भगवान केवल सेवा ही नहीं लेते हैं, भगवान बल्कि ज़्यादा सेवा देते हैं। और वास्तव में भगवान ही सेवा देते हैं, हम तो हमेशा हम लोग भगवान से सेवा लेते हैं। हम सेवा जो देते हैं वो सेवा के लिए भी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम पर कृपा करके भगवान वो सेवा स्वीकार करते हैं। चावल की क्या आवश्यकता थी भगवान को, लेकिन अपने भक्त के भक्ति को सम्मान देने के लिए भगवान चावल को स्वीकार किए। तो भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान ददाति प्रतिग्रहणाति, देना लेना, ये मतलब भगवान के साथ प्रेम सामंजस्य के लिए भगवान देते हैं। सुदामा को क्यों नहीं दिए? सुदामा जी के अंदर कोई धन की स्पृहा नहीं थी। वो अपने पत्नी से बार बार कहते थे कि देखो जो भक्त हैं उनको धन नहीं चाहिए, धन में फिर वो भक्ति भूल जाएंगे। भगवान तो बहुत पहले चाहते थे उनको देना, लेकिन सुदामा जी चाहते ही नहीं थे। वो गरीबी में ही भजन करना चाहते थे, क्योंकि गरीबी में जो भगवान का भजन हो सकता है, अमीरी में नहीं हो सकता है। आपको बहुत धन संपत्ति हो जाए तो उसको संभालने में आपका समय चला जाता है, बहुत बड़ा महल हो तो उसको देखभाल करने में आपका समय चला जाता है। इसलिए भक्त जो है संसार क्या, वो मुक्ति भी नहीं चाहता है, भुक्ति की भी कामना नहीं करता है, स्वर्ग की ही संपदा नहीं चाहता। न कपृष्टम न पारमेष्टम, न स्वर्ग की कामना करता है, न ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा का पद की कामना करता है, बल्कि वो केवल भगवान की भक्ति की कामना करता है। तो सुदामा कोई कामना नहीं लेकर भक्ति कर रहे थे, उसी अवस्था में भक्ति करना चाहते थे। इसलिए बाद में भी वो कहते हैं कि मुझे ये वस्तुओं से कोई अभिप्राय नहीं है, मैं आपकी भक्ति जैसे पहले करता था, मैं पहले जमीन पर अच्छा से सो जाता था। सुदामा जी का आगे मिलेगा, अभी इतना वैभव है इसका क्या प्रयोजन है। तो जो उच्च कोटि का भक्त है वो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, भगवान की सेवा केवल चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे मद भवताद भक्ति रहते। सुदामा जी केवल भगवान की भक्ति की कामना किए थे, कोई वस्तु नहीं चाहिए, देने पर भी नहीं लेते हैं। वैसा नहीं कि वो कहे कि आप कुछ दीजिए मैं आया हूं, मांगे भी नहीं, और मन में उनको क्षोभ भी नहीं था कि हमें कुछ दिए नहीं, तो निष्काम थे। सुदामा जी को जाने में कितना समय लगा था? जाने में अब समझिए कि पोरबंदर से लगभग 150-200 किलोमीटर है, कुछ दिन लगे होंगे। गरीब ब्राह्मण थे और बहुत दुर्बल हो गए थे, अभी इसमें नहीं आया है, हो सकता आगे आया हो, कुछ दिन तो हफ्ता भर तो लगा ही होगा।
या 15 दिन भी लगा होगा, उनके चलने के ऊपर है कितना स्पीड से चल रहे थे। अब कैसे चल रहे थे का वर्णन आगे शायद हो सकता है, अन्य ग्रंथों में उल्लेख होगा। रास्ते में उनको समय लगा था।
माया देवी ने उनको मदद किया था पहुंचाने में, अन्य माया देवी को भेजा था उनको पहुंचाने में मदद किए थे
माया देवी थी। प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको जोग माया ने वहां पहुंचा दिया था सुदामा जी को, तो हो सकता है। लेकिन इसमें नहीं दिया, इसमें दिया है भागवत में कि सुदामा जी बहुत खुश थे कि भगवान ने मुझे आलिंगन किया, मुझे सेवा दिया, मैं तो बहुत गरीब और बहुत पापी हूँ, मैं इस सम्मान के काबिल नहीं हूँ, इसमें भागवत में वो नहीं दिया है। वो बहुत खुश थे उनकी इतना उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, इससे वो बहुत खुश थे, उनके मन में विचार ही नहीं था कि मुझे चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हमने ऐसा सुना है क्या, जब सुदामा जी जब निकले द्वारका के लिए तो चलते चलते रास्ते में उनको कोई ऐसी भजन कीर्तन मंडली मिल गई और वो मंडली के साथ पता ही नहीं चला उनको कहाँ जा रहे हैं, और वो लोग जा रहा था द्वारका और वो कीर्तन वाले लोग जा रहे थे बनारस काशी दर्शन करने और करते करते ऐसे गए काशी में, तो वहां जाके उसको पता चला अरे बाप रे ये तो मैं उल्टी जगह आ गया। तो उसने भगवान को बोला नहीं अभी मैं तेरा दर्शन नहीं कर सकता हूँ, क्या पता अभी मैं कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन जब वो गंगा जी किनारे सोया था तो सवेरे उठ के देखता है तो वो द्वारका में एक नदी है ना, क्या नाम उनका, कोई गंडकी या कोई तो नदी है द्वारका में, उसके किनारे सोया हुआ मिला। तो फिर वो
गोमती,
हाँ गोमती के किनारे, ऐसा सुना गया है। हरे
मैं भी सुना हूँ लेकिन कहाँ पर है मैं नहीं जानता हूँ। प्रभु जी कह रहे हैं कि सुदामा जी जब घर से निकले तो आगे कीर्तन मंडली मिल गई, कीर्तन मंडली के साथ वो बनारस पहुंच गए। बाद में उनको मालूम हुआ कि मैं बनारस आ गया तो उनको बहुत दुख हुआ, तो रात्रि में वहीं विश्राम किए तो रात्रि में जोग माया ने उनको द्वारका पदस्थापित कर दिया। तो कई जगह कथाएं हैं सुदामा जी के बारे में, हो भी सकता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की।